माधव भी तन्हा बैठा था, राधिका से आज हुई मुलाकात के बारे में सोच रहा था। पिछली बार चाहे जो हुआ हो, जिसके कारण ना चाहते हुए भी मुझे आपसे दूर होना पड़ा, उस अनचाहे बंधन में बंधना पड़ा, पर इस बार जब किस्मत में हमें दोबारा मिलवाया है तो मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आप बहुत अनमोल हैं मेरे लिए और मैं आपको किसी कीमत पर खो नहीं सकता। मेरे संघर्षों भरी जिंदगी में आप सुकून की छांव हैं, मेरे तपते रेगिस्तान जैसे जीवन में आप बरखा की खंडी फुहार हैं। आपके साथ मेरा मन का बंधन है, एक अनदेखी सी डोर है जो मुझे आपसे जोड़ती है। मैं जानता हूं कि हालात अब पहले से बहुत बदल चुके हैं। जिस रिश्ते में हम जुड़ने वाले थे, अब शायद वो मुमकिन नहीं। आपका जीवनसाथी बनने का मौका खो चुका हूं, पर मैं इस बार आपको नहीं खोना चाहता। जीवन साथी ना सही, पर एक सच्चा दोस्त बनकर तब तक मुमकिन होगा। मैं आपका हमसफर, हमदर्द और हमराज बनकर आपका साथ निभाना चाहता हूँ। उस पुरानी राधिका को ढूंढना चाहता हूँ जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर खुद को भुला चुकी है। मेरे कारण जो जख्म आपके दिल पर लगे हैं, उन पर अपनी दोस्ती और साथ का मरहम लगाना चाहता हूँ। आपकी भावनाओं को अनजाने में ठेस पहुँचाई है मैंने, उसके लिए पश्चाताप करना चाहता हूँ। किस्मत ने एक मौका दिया है अपनी गलती को सुधारने का, उसका इस्तेमाल करके हमारे बीच जो अजीब सी तनावपूर्ण स्थिति बन गई है, उसे सुधारना चाहता हूँ, ताकि कल को मन में कोई मलाल और दिल पर कोई बोझ ना रहे। माधव के इरादे मजबूत थे और इरादे नेक थे। अब बस देखना ये था कि किस्मत किसका साथ देती है और किसकी कामना पूरी होती है। राधु, तुम माधव जी को पहले से जानती हो ना? इस वक्त आहाना और राधिका लंच ब्रेक में साथ ही बैठी थीं। उनके उस डिनर को दो दिन बीत गए थे और सोचते सोचते आहाना ने आज बात छेड़ ही दी थी। राधिका अचानक उसके मुंह से माधव का जिक्र सुनकर पल भर को चौंक गई, पर जल्दी ही उसने खुद को संभालते हुए सहमति में सर हिला दिया। कैसे? मतलब हमने तुम्हारे मुंह से पहले कभी उनका जिक्र नहीं सुना, और उस दिन हमें लगा जैसे कुछ ठीक नहीं है आप दोनों के बीच। पहले तुम उस रेस्टोरेंट में जाने से इनकार कर रही थीं, फिर माधव जी के आने पर कुछ परेशान हो गई थीं। और भी बहुत से सवाल थे उसके मन में, जिनके जवाब वो राधिका से चाहती थी, पर सवाल कैसे करे ये समझ ना सकी। उसको उलझन में फंसे देखकर राधिका ने ठंडी आह भरी और आज अपनी जिंदगी के उस राज पर से पर्दा उठा दिया, जिसका वो अकेले में खुद से सामना करने से भी कतराती थी। सालों पहले रिश्ता आया था उनका मेरे लिए, शादी की बात चल रही थी हमारी, इत्तेफाक से मुलाकात भी हुई थी हमारी, पर फिर रिश्ता टूट गया, हमारी जिंदगी के रास्ते जुदा हो गए और उसके कुछ वक्त बाद ही मेरी शादी हो गई। सालों बाद कुछ वक्त पहले उनसे मेरी अचानक फिर से इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। पहले और अभी भी कई बार उन्होंने मेरी मदद की है, सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। वो मेरे अतीत का एक हिस्सा है जो सालों बाद अचानक ही मेरे वर्तमान में शामिल होने लगा है, और ये मैं नहीं चाहती। अब इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूँ ये तो मुझे समझ नहीं आता। कुछ अजीब से भाव राधिका के चेहरे पर उभे और लबों पर बेबसी भरी मुस्कान ठहर गई। आहाना गहरी निगाहों से उसके चेहरे को देखती रही, फिर संजीदगी भरे स्वर में बोली, कुछ रिश्तों के कुछ नाम नहीं होते राधिका, उनसे जुड़े अनकहे एहसास ही उनकी पहचान होते हैं। आहाना के शब्द राधिका के कानों से टकराए और उसकी उलझन भरी सवालिया निगाहें उसकी ओर उठ गईं। माधव जी पसंद थे ना तुम्हें? उसका एक सवाल राधिका के शांत दिल में कंकड़ जैसा पड़ा और भावनाओं का एक सैलाब सा उमड़ने लगा। कितने परतों के पीछे उसने अपने मन के जज्बातों को छुपाया था, खुद से भी उसका सामना करने से कतराती थी, पर आहाना ने एक लम्हे भर में उन जज्बातों को बेपर्दा करके उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया था। वो इस कदर हैरान थी कि फटी आंखों से अचंभित सी उसे देखती ही रह गई, उसका बात का विरोध तक करने का होश न रहा उसे। राधिका का ये रिएक्शन बहुत कुछ कह गया था और शायद आहाना अब उसके मन के भावों को जान गई थी। माधव जी से रिश्ता जुड़ने वाला था तुम्हारा और वो पसंद थे तुम्हें, पर रिश्ता जुड़ ना सका और तुम्हारी शादी कहीं और हो गई। दिल में किसी और की छवि बसाकर जिंदगी में किसी फायर को शामिल करना आसान नहीं होता, और तुम्हारा तो वो अनुभव और भी खराब रहा। माधव जी का सालों बाद तुम्हारे सामने आना तुम्हें बिल्कुल ऐसा एहसास करवाता है जैसे तुम्हारे पुराने जख्म हरे हो गए हैं। मन में ये भाव भी आता होगा कि अगर तुम्हारा रिश्ता माधव जी से हुआ होता तो शायद आज तुम्हारी जिंदगी इस मोड़ पर ना खड़ी होती और तुम्हें वो सब नहीं सहना पड़ता जो तुमने सहा। तुम्हारे व्यवहार में वही नाराजगी शिकायत छलकती है जो शायद तुम्हें माधव जी से या अपने नसीब से है। तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं आज भी उनके लिए एहसास मौजूद है, इसलिए तुम उनकी ओर देखने से भी कतराती हो। तुम्हारे दिल में आज भी उनके लिए एक खास जगह है। आज भी तुम्हारे मन में उनके लिए भावनाएं हैं जिन्हें तुम उनके सामने नहीं लाना चाहती या खुद का उनसे सामना होने से घबरा रही हो। तुम्हें डर है कि जैसे सालों पहले वो तुम्हें भा रहे थे, कहीं फिर से तुम्हारा मन उनकी ओर झुकने ना लगे। तुम फिर से अतीत को दोहराना नहीं चाहती। ये मिश्रित भाव ही तुम्हारी बेचैनी और परेशानी की वजह है। इतने सटीक शब्दों में आहाना ने उसके मनोभावों को व्यक्त किया था कि राधिका बस देखती ही रह गई। जैसे जैसे आहाना बोल रही थी, बहुत सी बातें राधिका के मन में घूमने लगी थी। इसके साथ ही उसके चेहरे के भाव बदलने लगे थे। आहाना चुप हुई। इसके साथ ही राधिका ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, ये सच है कि मैं पास्ट को दोहराना नहीं चाहती। माधव जी से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि वो मुझे मेरे उस पास्ट की याद दिलाते हैं जिसे मैं सालों पहले भुला चुकी हूँ। कुछ वक्त पहले तक मुझे उनसे नाराजगी थी, पर वो सिर्फ एक गलतफहमी का नतीजा था। मेरे दिल में अब उनके लिए कोई शिकवा व शिकायत नहीं है। जो मेरे नसीब में था मुझे वही मिला। मेरे मन में पहले उनके लिए कुछ कोमल भावनाएं जरूर पनपी थी, पर अब उनके लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं। तुम इस बारे में ज्यादा सोच रही हो। माधव जी और मेरे बीच अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जाने वो आहाना को समझा रही थी या अपने मन को बहला रही थी। उसकी बातें सुनकर आहाना के लबों पर सौम्य सी मुस्कान उभर आई। क्रमशः